समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, समाचार पत्रिका परिक्रमा में आपका स्वागत है। श्रोताओ, हर रोज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के समाचार, साथ ही देशभर में मौजूद हमारे संवाददाता अपनी विशेष रिपोर्ट के माध्यम से अलग अलग राज्यों की नवीनतम गतिविधियों की जानकारी देते हैं। आर्थिक जगत की खबरों पर भी हमारी नजर रहती है, साथ ही हम आप तक पहुंचाते हैं खेल गतिविधियां। आज पारसी समुदाय का नववर्ष नवरोज के रूप में मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले अपने सभी सुनने वालों को नवरोज की शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला साल हम सबकी जिंदगी में खुशियों से भरा हो, बेहतर स्वास्थ्य वाला हो। तो आइए श्रोताओ, इसी शुभ संदेश के साथ शुरू करते हैं परिक्रमा कार्यक्रम। आज के अंक के साथ मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून अथर, यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विथ मी टुडे इज माय को होस्ट अथर सईद। एंड अथर मेंशन्ड नवरोज, एंड टू ऑल आवर लिसनर्स, लेट द फेस्टिविटीज बिगिन। हैप्पी नवरोज टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग इट। मे दिस पारसी न्यू ईयर ब्रिंग बाउंडलेस हैप्पीनेस एंड जॉय टू योर लाइफ। एंड अथर, देयर इज नो बिगर जॉय देन नोइंग दैट वी कैन ऑलवेज स्टार्ट अफ्रेश। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi says India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 1.25 lakh startups and 110 unicorns.
Lok Sabha chunav ke pehle charan ke liye adhisoochana jari.
External Affairs Minister S. Jaishankar terms Lok Sabha elections as the largest electoral logistics exercise that this planet has ever witnessed.
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया।
And in badminton, ace Indian shuttlers Lakshya Sen, PV Sindhu and Kidambi Srikanth to start their Swiss Open campaign in Basel today. And now, Arthur, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments. Yes, absolutely. Taking place at the national and global level today, like you can make out from Arthur's hysterical laugh, that today is the International Day of Happiness and World Sparrows Day. बिल्कुल
खुशी मिली ना।
एब्सोल्युटली
हैप्पीनेस डे का मतलब यही है अभिषेक, के हंसने से हमारी जिंदगी की तमाम मुश्किलें कम हो जाती हैं या फिर हल हो जाती हैं। आप देखें कि तनाव में अगर आप होते हैं तो आपकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इसके उलट यदि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश मिजाज हैं, आप हंसते हुए बात कर रहे हैं, तो कई बार हमारी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लॉफिंग क्लब बन गए हैं आज खुशी को हासिल करने के लिए। अलग अलग आप पार्क में जाते हैं तो एक ग्रुप्स आपको अलग अलग जोरदार हंसी ठहाके मारते मिल जाएंगे। उनका पर्पज यही है कि आपको खुशी मिले और आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनको खुशी मिले। और हंसी के पीछे न सिर्फ यही एक कारण है कि आपको खुशी मिल रही, बल्कि आप शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्ती की ओर बढ़ रहे हैं।
यस, एंड डेनिस वाइटली हैज वेरी फेमसली सेड दैट हैप्पीनेस कैन नॉट बी ट्रैवल्ड टू, ओन्ड, अर्न्ड, वन और कंज्यूम्ड। हैप्पीनेस इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एवरी मिनट विद लव, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। वेल, द डेज गोल इज टू मेक द वर्ल्ड अ काइंडर एंड हैप्पियर प्लेस बाय एनकरेजिंग पीपल टू प्रैक्टिस simple daily happiness habits. The International Day of Happiness encourages people to consider that there are a variety of ways to find happiness, including meaningful relationships with others, good mental health and self-fulfillment. This day is celebrated as a call to action for people and organizations to concentrate on raising their own and the community standards of happiness, and we can make the world a happier and more fulfilling place for everyone if we acknowledge and prioritize happiness.
मेरा मानना तो यह है कि हंसता मुस्कुराता चेहरा दुनिया को सबसे अच्छा लगता है और सबसे खूबसूरत चेहरा होता भी है, चाहे उसका रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन हंसते हुए चेहरे का नूर बिल्कुल अलहदा हो जाता है, अलग हो जाता है। हंसने से जिंदगी की तमाम मुश्किलें कम हो जाती हैं, हल हो जाती है और हमें जिंदगी को खुलकर जीने की एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और एक नया हौसला मिलता है अभिषेक। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें इतने सारे तनाव हैं, इतने सारे दबाव हैं और इतनी सारे दूसरी फीलिंग्स के बीच में रहते हुए हम अक्सर मुस्कुराना भूल जाते हैं, सारे काम करते हैं बस मुस्कुराना भूल जाते हैं। लाफिंग क्लब का मैंने जिक्र किया, कुछ और चीजें हैं जिनको हमें अपना करके अपनी जिंदगी को हैप्पीनेस से भर देना होगा। रिश्ते बहुत खूबसूरत चीज है नेचर की दी हुई। रिश्तों में अपने आप को बांधना चाहिए, अपने परिवार के लिए वक्त निकालना चाहिए, दोस्तों के साथ वक्त निकालना चाहिए, इससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। बच्चों के साथ सबसे ज्यादा आपको खुशी मिलेगी, संगीत सुनने में भी आपको खुशी मिलेगी अभिषेक। और अगर आप कहते हैं कि प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं तो प्रकृति की तरफ निकल जाइए। जैसे आजकल बसंत पूरे अपने यौवन पर है, तो बिखरे हुए जो पत्ते हैं, पीले पत्ते अगर आपको धरती पर नजर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे एक कालीन सी बिछ गई है। लाल फूल बिखरे नजर आते हैं, रंग बिरंगे फूल आपका स्वागत करते हैं, तो इससे भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए।
एब्सोल्युटली अथर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हैप्पी। व्हाई? बिकॉज फीलिंग गुड, पॉजिटिव इमोशंस डू गुड थिंग्स फॉर आवर ब्रेन्स एंड बॉडीज। दे लोअर स्ट्रेस हॉर्मोन्स, हेल्प इज एंग्जायटी एंड डिप्रेशन एंड इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। And feeling some positive emotions every day has a big effect on happiness and well-being. So let's briefly touch upon the history of this day.
Yes.
In July 2012, the United Nations General Assembly passed a resolution declaring March 20 as the International Day of Happiness. The resolution was initiated by Bhutan, a country which recognized the value of the national happiness over national income since the early 1970s and famously adopted the goal of gross national happiness over gross national product. It also hosted a high-level meeting on happiness and well-being, defining a new economic paradigm. During the 66th session of the General Assembly, the International Day of Happiness holds multiple meanings. It highlights the impact of a simple smile, like Athar was saying. Smiling can improve mood and reduce stress. This positive feedback loop has the potential to spread. Even a single uplifting message or act can bring joy to people all over the world. And the International Day of Happiness can be celebrated in a variety of ways. Some people organize events and activities to promote happiness and well-being, while others share positive messages and quotes on social media. And Athar, I'd like to share some simple tips to stay happy. Practice gratitude. Take a moment every day to appreciate the good things in your life, big or small. Stay active. Engage in physical activities that you enjoy, whether it's walking, dancing, or playing sports. Connect with others, spend time with loved ones, whether it's chatting with friends, spending quality time with family, or volunteering. Practice mindfulness, be present in the moment, and pay attention to your thoughts and feelings without judgment. And Athar, I'd like to add here that it is not only important to be happy and stay happy, but it is equally important to give happiness and spread happiness all around.
बहुत अच्छी बात कही है। इन सारी चीजों का निचोड़ मैं कहूँ तो हर छोटी से छोटी चीज में खुशी तलाशने का प्रयास हमें करना चाहिए। वैसे कई सारी चीजें होती हैं खुशी को हासिल करने के लिए। आप खुशहाल कितने हैं, आप कितना अर्निंग कर रहे हैं, पर्यावरण आपके आसपास कितना अच्छा है, कितना हेल्दी है, आपकी सेहत कैसी है, ये तमाम तर चीजें। साफ स्वच्छता का भी अपना महत्व है खुशहाल रहने में, हैप्पीनेस लाने में। तो इन तमाम चीजों को ख्याल करना चाहिए। अभिषेक एक बात बताइए, आप ऑफिस से जाने के बाद क्या किचन में कभी कोई डिश ट्राई करते हैं बनाने की?
Well, I'd love to. Athar, I don't have the inclination to cook really this day.
मजा नहीं आता है। cleaning मजा आता है। पौधों को पानी देने मजा आता है।
I'm more the consuming type. I don't like to cook. I like to consume.
अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे आपकी हॉबीज हैं, चाहे आप किचन में कोई डिश ट्राई करते हैं, या फिर आप शॉपिंग पर अपने घर वालों को ले जाते हैं या खुद रहते हैं, तो एक खुशी मिलती है। एक और चीज में खुशी मिलती है, मैंने नेचर का जिक्र किया, प्रकृति की बात कही। प्रकृति जैसे बसंत इस समय हमारे आसपास है, वो क्या नाम है, हमें खुशी देता है। लेकिन प्रकृति के जो हिस्से के रूप में जो जीव जंतु हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं न सिर्फ खुशी देते हैं बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। मैं एक ऐसे पक्षी की बात कर रहा हूं जिसको हमारी आंखें अब तलाश करती हैं लेकिन वो पक्षी नजर नहीं आता है। बहुत छोटी सी घर के आंगन में फुदकती हुई गौरैया आपने देखी होगी, वो गौरैया आज कहाँ है, लुप्त सी हो गई है। गिद्ध को हम कहाँ देखते हैं, गिद्ध नजर नहीं आते हैं। इस तरह से बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन आज हम चूंकि विश्व गौरैया दिवस है अभिषेक, तो आज गौरैया पर फोकस करते हुए ये बात करेंगे। कभी जो हमारे आंगन की जीनत बनती थी, खुशहाली लाती थी, घरों को अपनी चहचहाहट से वो खुशहाल बना देती थी, अब वो नजर नहीं आती है। कहीं ना कहीं गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या कम कर दी है और कई जगह तो ये बिल्कुल नजर नहीं आती है। अभिषेक, विश्व गौरैया दिवस आज है और पहली बार ये 2010 में मनाया गया था। जी
यस द स्पैरो इज सच अ बर्ड दैट इज दो वेरी कॉमन isn't it in India, and we get to see a lot of it. And today, of course, we are celebrating the World Sparrow Day. So happy.
बिल्कुल इसको बचाने में इसके संरक्षण में हमें अपना योगदान करना चाहिए. हम उनके जो आशियाने हैं जो उनके जहां पर वो अपना घोंसले बनाती थी उन घोंसले बनाने की जो प्राकृतिक आवास के रूप में घरों में कहीं ना कहीं कुछ खिड़कियां इस तरह की छोड़ दीजिए कि उनको संरक्षण मिले वो आकर अपना घर बना सके.
सो टू वाइंड अप वी वुड लाइक टू विश ऑल आवर लिसनर्स अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड स्पैरो डे.
बिल्कुल और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और ये जानने का कि क्या कुछ विशेष है उनके पास. इस क्रम में हम होली की बात करेंगे. होली बिल्कुल करीब आती जा रही है. देश भर में इन दिनों होली के त्योहार को लेकर बाजार रंग बिरंगे आकर्षक रंगों में रंग गए हैं और सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. इस कड़ी में पंजाब के विभिन्न शहरों में भी लोगों में होली का पर्व धूमधाम से मनाने को लेकर पूरा उत्साह है और लोग बेसब्री से इस त्यौहार का इंतजार कर रहे हैं. मंदिर में तो फूलों की होली खेलने का सिलसिला कई दिन पहले ही शुरू हो गया था. आइए और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता से.
रंगों का त्यौहार होली आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और लोग इस त्यौहार को लेकर बेहद ही रोमांचित हैं. आखिर होली क्यों ना, ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि हर उम्र वर्ग के लोगों को रंगों के साथ आपस में खुशियां साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है. जालंधर समेत पंजाब के विभिन्न भागों के सभी छोटे बड़े बाजार इन दिनों लाल, गुलाल, हरे, पीले व केसरिया रंग समेत अन्य रंगों से भरे पड़े हैं. अपने बच्चों के साथ लोग इन रंगों की खरीदारी में जुटे हैं. इसी के साथ बाजार में विभिन्न किस्म की आकर्षक पिचकारियां उपलब्ध हैं, जिनमें छोटा भीम, मोटू पतलू, वाटर टैंक गन, फॉग स्प्रे व डोरेमान किस्म की पिचकारियां बच्चों को बेहद लुभा रही हैं. वहीं एक बटन के साथ ही रंग उड़ेलने वाली ऑटोमेटिक पिचकारियों को भी बाजारों में देखा जा सकता है. समय के साथ अब हर्बल रंगों का प्रचलन भी काफी अधिक बढ़ गया है और अनेक गैर सरकारी संस्थाएं हर्बल रंगों के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से हर्बल रंगों को बेहद ही सुरक्षित माना जाता है और ऐसे में लोग हर्बल रंगों की खरीद को भी प्राथमिकता देने लगे हैं. अगर बात मंदिरों की करें तो वहां फूलों की होली खेलने का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है. मंदिरों में रोजाना विशेष धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और लोग भगवान श्री कृष्ण व राधा की स्तुति करने के साथ ही फूलों के साथ होली खेल रहे हैं. निश्चित रूप से होली का ये त्यौहार समाज में सभी को आपस में मिलकर खुशियां बांटने का एक अवसर प्रदान करता है. परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतल.
इन केरला द स्टेट कार्बन म्यूजियम पॉपुलरली नोन एज अ केरला म्यूजियम होस्ट जी फेस्ट अ ट्रैवलिंग फेस्टिवल दैट ब्रिंग्स टुगेदर जेंडर रिलेटेड आर्ट एंड आर्टिस्ट. वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट नयुषा फ्रॉम तिरुवनंतपुरम.
The G-Fest art show spreading over the multiple galleries of the spacious Kerala Museum is a three-month festival. The art show held as part of the G-Fest at the Kerala Museum showcases the works of 22 women artists and artist collectives exploring the intersecting themes of gender and identity. It aims at initiating a dialogue about art, gender and diverse related perspectives and preoccupations. As part of the fest, a series of talks, panel discussions, interactive workshops and forms of creative expressions are taking place. One of the striking works, a multimedia installation, is that of Dharchini Collective of Himachal Pradesh, Kangra district, called Pahadan Dalan. What sets the show apart is a diversity of creative expression, graphic art, painting, photography, video, audio installations, books, needlework, calligraphy and weaving under one roof. The G-Fest concludes on May 5th. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
और अब बात करेंगे अंडमान निकोबार की. तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा. इस चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से आरंभ हो गई. इस विषय में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश चंद्रलाल.
द्वीप समूह की एकमात्र सीट के लिए 412 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से दक्षिण अंडमान में 223, मध्य उत्तर अंडमान में 132 और निकोबार जिले में 57 मतदान केंद्र हैं. इन सभी मतदान केंद्रों में मतदान के दिन सभी जरूरी निश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. द्वीप समूह में 311,802 मतदाता हैं. इनमें दक्षिण अंडमान जिले में सबसे अधिक 2,07,441 मतदाता हैं, जबकि मध्योत्तर अंडमान में इनकी संख्या 79,180 है. निकोबार जिले में कुल मतदाताओं की की संख्या 25,181 है। डिपो के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने बताया कि 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 64,169 मतदाता हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र के 1,042 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। डिपो में 2,355 दिव्यांगजन मतदाता हैं। डिपो में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने तथा दूर दराज के दुर्गम डिपो में भी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबल बे के पिलोपेशिया में ऐसा ही एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया है जहां कुल 12 मतदाता हैं। इसके अलावा लॉफुल बे के मतदान केंद्र में सिर्फ 14 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार के चुनाव में आदिम जनजाति के मतदाता भी वोट डाल सकते हैं। इनमें 98 शाम्पेन मतदाता, 68 ऊंगी और 39 अंडामानीस मतदाता हैं। 13 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां 100 से भी कम मतदाता हैं। इसके अलावा 9 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जिसे सिर्फ महिला कर्मियों द्वारा ही संचालित किया जाएगा। कुछ आदर्श मतदान केंद्रों की भी स्थापना की गई है। डिपो में चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई पालन करने के लिए राजनीतिक दलों, मीडिया तथा प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई और उन्हें दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। डिपो में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के वास्ते स्वीप गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से द्वीप समूह की एकमात्र सीट के लिए संभवतः आज उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है। परिक्रमा के लिए पोर्टर से मैं राकेश चंद्रलाल।
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats, and other relevant facts by correspondent. First, let's go to the Assam Lok Sabha elections. And Assam, which is a gateway to the northeastern states, is all set to witness a high voltage battle between the ruling BJP-led alliance and the opposition Congress-led parties in this Lok Sabha elections. Let's hear more from a correspondent.
Assam has 14 Lok Sabha seats and this is the first election to be held in the state after last year's delimitation exercise. The election in the state will be held in three phases. The first phase will have five parliamentary constituencies consisting of Kaziranga, Sonitpur, Lokhimpur, Dibrugarh and Jorhat. The voting for the first phase will be held on April 19. The second phase also will have five parliamentary constituencies consisting of Dorang-Udalguri, Difu, Karimganj, Silchar and Nagaon. The date of the poll for the second phase is April 26. The third phase will have four parliamentary constituencies consisting of Kokrajhar, Dhubri, Barpeta and Guwahati. The date of polls for the third phase will be held on May 7. Assam has around 2,43,01,960 eligible voters. In the last elections, the BJP secured 9 seats, the Congress 3 and the AIUDF 1. There is also an independent MP from the state in this outgoing parliament. The counting of votes will be done on 4th June for all the constituencies. Aminul Haq Zubdar, Akashvani News, Guwahati.
Tamil Nadu will go to general polls in a single phase on 19th of April. The notification for the polls will be issued today. The last date for filing of nominations will be the 27th of this month. Scrutiny will be done on the 28th and the last date for withdrawal will be the 30th of March. By-polls for the Vilavankot Assembly constituency will also be held simultaneously in the state. The constituency fell vacant due to the resignation of former Congress Whip Vijaya Dharani. And out of the 39 constituencies, Chidambaram, Nagapattinam, Tenkasi, Nilgiris, Vilupuram, Tiruvallur and Kanchipuram are reserved constituencies and others are general. We have a report from a correspondent, Joy.
This time it will be a three-cornered contest in the state as AIADMK has decided to walk out of the NDA alliance and face the elections. BJP for the first time without AIADMK will also test the political waters in the state by forming alliance with Patali Makkal Katchi, Tamil Manila Congress, Amma Makkal Katchi led by TTV Dinakaran and other smaller parties. The present state opposition AIADMK is still to finalize its alliance partners. DMK on the other side has sealed the deal with Congress, contesting in 9 seats in Tamil Nadu and 1 in Puducherry. DMK will contest in 21 seats, VCK, CPM and CPI will contest in 2 each, MDMK, IUML, Kungunadu Makkal Katchi have been allotted 1 seat each. The newcomer to this alliance is the actor-politician Kamal Hassan of the Makkal Nidhi Mayam. On the agreement that Rajya Sabha seat will be given to his party in 2025, he has pledged support for the alliance. Joy, AN News, Akashwani, reporting from Chennai.
The Union Territory of Jammu and Kashmir is divided into two geographical regions, viz. Kashmir Valley and Jammu. The geographical area of the UT is 6.74% of the total area of the country. The current estimated population of the UT is approximately 1.56 crores, and there are a total of 86,92,646 electors in the UT. Of this, 44,35,541 are males and 42,56,946 females. The UT has a total of 5 parliamentary constituencies. Out of these 5 constituencies, 2 are located in Jammu Division and 3-4 in Kashmir Division. The Jammu Division of the UT has 2 parliamentary constituencies, viz. Jammu Parliamentary Constituency and Udhampur Parliamentary Constituency, which covers a total of 8 districts of the Union Territory of 20 districts. The Election Commission has issued a notification for Udhampur Doda Parliamentary Constituency today, which will go to the polls on the first phase on April 19. We have a report from a correspondent, Gulshan Raina.
The last date of filing the nominations is 27th March and 28th March will be the last date for the scrutiny of the nominations, whereas March 30 has been fixed as the date of withdrawal of the candidates. The Jammu Riyasi seat will have voting in second phase on April 26, Anantnag Poonch Rajouri in third phase on May 7, Srinagar in fourth phase on May 13 and Baramulla in fifth phase on May 20. Jammu and Kashmir division have 2 complete Lok Sabha seats each, while fifth seat Anantnag Poonch Rajouri is divided between the 2 divisions. In 2014 and 2019, BJP won both Jammu Division seats, including Udhampur and Jammu, where Union Minister of State in PMO Dr. Jitendra Singh and Jugal Kishore Sharma emerged victorious. Both of them are seeking third term from the same constituencies. In addition to Udhampur and Jammu parliamentary seat, the BJP is focusing on Anantnag Poonch Rajouri constituency. So far, only BJP and Democratic Progressive Azad Party DPAP have announced their candidates for the Udhampur seat. Union Minister Dr. Jitendra Singh and former minister G.M. Saruri would be candidates of BJP and DPAP respectively. The Congress is yet to announce its candidate for the seat. The National Conference has announced that it will be contesting 3 seats of Kashmir, including Srinagar, Baramulla and Anantnag, but has not named the candidate. Similarly, the Congress will field its candidate in Jammu and Udhampur constituencies. The PDP is yet to take any decision on how many seats it will contest. This is N. Gulshan Raina from Akashwani News, Jammu.
Now we will take on a tour around India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember Gandhian freedom fighter Deen Bandhu Charles Freer Andrews, who came to India on the 20th of March 1904 and joined the St. Stephen's College in Delhi. During his long stay in India, the British social reformer identified himself with the socio-economic and political problems of the Indian masses. He fought against the British racial and imperial rule with the support of Mahatma Gandhi, Gopal Krishna Gokhale and other prominent Indians. He also had a deep connection with Rabindranath Tagore, who invited him to Shantiniketan on several occasions.
Along with Mahatma Gandhi, Andrews also worked in Africa against the system of indenture and succeeded in procuring the basic rights for Indians there. Indians called him Deena Bandhu, the friend of the poor and oppressed. Andrews was a very well-known writer and wrote about a dozen of major works along with hundreds of articles which had deep linkage with the life of common Indian as well as the problems of mankind. Talking about C.F. Andrews, Gandhiji had said,
"He was a good son of England and he became also a son of India. I have not met a better man or better Christian."
It was through Andrews that Gandhi and Rabindranath met. On the one hand, he took upon himself the task of interpreting Gandhi to the West and keeping open the possibility of a dialogue between Indian leaders and the British government. On the other hand, he was working closely with Gurudev Rabindranath Tagore in the making of Vishwa Bharati and travelling with him both in India and abroad.
We also remember freedom fighter Khagapati Bhotra, who died on the 20th of March 1943. A resident of Koraput, Odisha, Khagapati actively participated in the Quit India movement in August 1942 in Odisha. He was arrested by the British police and detained in Nabarangapur. Khagapati fell severely ill due to unhygienic living conditions and lack of medical care in Nabarangapur jail. He was first admitted to a hospital on the 17th of February 1943, but later, along with other political prisoners, was shifted to Koraput District Jail. Kagapati Bhotra died of heart failure on the 20th of March 1943 during imprisonment.
We also remember Martyr Sarfaraz Khan, a resident of Delhi who participated in the First War of Indian Independence in 1857. He joined the army in Delhi and took active part in fighting against the British army. He was captured by British troops after reoccupation of Delhi and executed by hanging on the 20th of March 1858.
We also remember Martyr Gandharva Singh, a resident of Sagar district, Madhya Pradesh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Singh joined hands with the freedom fighters of Sagar area and fought the British forces. He was captured by the British in the course of an engagement and hanged on the 20th of March 1858.
In business news today, benchmark indices ended with marginal gains in the volatile session today amid positive sentiments in the Asian stocks. The 30-share Sensex rose 90 points or 0.12% to settle at 72,102. And the NSE Nifty gained 22 points or 0.10% to close at 21,839. In the forex market, the Indian rupee today ended at 83 rupees and 17 paise against the US dollar. In the global oil market, intraday trade Brent crude was trading at $86.82 per barrel when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन में आज भारत के लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजभट और अन्य खिलाड़ियों के मैच होंगे. इससे पहले पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर में सतीश कुमार करुणाकरण ने अल सल्वाडोर के ओरियोल कैंजुरा को हराया, जबकि समीर वर्मा ने ब्राजील के को एल्हो डी ओलिवेरा को पराजित किया. और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का, अभिषेक, जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर है जन्मदिवस. तो इस क्रम में सबसे पहले हम याद करेंगे प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह को, जिनकी आज है पुण्यतिथि.
खुशवंत सिंह बॉर्न कुशल सिंह पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2014. ही वाज एन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन. हिज एक्सपीरियंस इन द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड हिम टू राइट ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956, मेड इनटू अ फिल्म इन 1998 व्हिच बिकेम हिज मोस्ट वेल नोन नॉवल. Born in Punjab, Kushwant Singh was a man of many talents. He was educated in modern school, New Delhi, St. Stephen's College, and graduated from Government College, Lahore. His time at King's College, London, and University of London shaped his intellectual journey. After being called to the bar at the London Inner Temple, he practiced law at the Lahore High Court for 8 years. His experiences during the partition of India in 1947 deeply affected him, leading him to join the Indian Foreign Service. However, his stint as a journalist at the All India Radio in 1951 and later at the Department of Mass Communication of UNESCO in Paris truly ignited his passion for literature.
आज ये पुण्यतिथि है रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो की. वे भारतीय सिनेमा के खलनायक, अभिनेता होने के अलावा सिविल इंजीनियर भी थे. आइए उनके द्वारा अभिनीत फिल्म कालिया और आखिरी मुकाबला का ये संवाद सुनते हैं, बल्कि दो संवाद सुनते हैं.
जिस थाली पे तुमने हाथ रखा है वो थाली मेरी है.
तुम्हारी कैसे हो गई? तुम तो लाइन में भी नहीं हो.
हम जहाँ कार्य होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
तुम्हें लोग से टाइगर का इंट्रोडक्शन बराबर नहीं कराया जंगी. अच्छा, बेईमानी के बिजनेस में ईमानदारी हमारा काम का फाउंडेशन है जनी. 3,000 लेने क्यों नहीं आया हमारे पास जंगी?
आज ही जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक का जन्मदिन है और उनके 3 दशक लंबे करियर में एक से बढ़कर एक गीत संगीत हमें सुनने को मिले. आइए छोड़ चलते हैं आपको उनके गाए कुछ गीतों के मुखड़ों के साथ, क्योंकि श्रोता अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. लेकिन इससे पहले हम संगीत से भी दो बदू हो दें, अभिषेक. फिलहाल अथर सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दें. नमस्कार.